ये साप्ताहिक बाइबल का उपदेश प्लेनफील्ड क्रिश्चियन साइंस चर्च इंडिपेंडेंट से है, जो न्यू जर्सी अमेरिका में है। अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएं www.plainfieldcs.com। आपके अध्ययन के लिए ये पाठ रविवार 7 जुलाई 2019 के लिए है। विषय: परमेश्वर। स्वर्णपथ: भजन संहिता। ये वही ईश्वर है जो समर्थ से मेरा कटिबंध बांधता है और मेरे मार्ग को सिद्ध करता है। उत्तरदायी अध्ययन: भजन संहिता। सचमुच मैं चुपचाप होकर परमेश्वर की ओर मन लगाए हूँ, मेरा उद्धार उसी से होता है। सचमुच वही मेरी चट्टान और मेरा उद्धार है, वो मेरा गढ़ है, मैं बहुत न गिरूंगा। मेरा उद्धार और मेरी महिमा का उद्धार परमेश्वर है, मेरी दृढ़ चट्टान और मेरा शरण स्थान परमेश्वर है। हे लोगों, हर समय उस पर भरोसा रखो, उससे अपने अपने मन की बातें खोलकर कहो, परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। परमेश्वर ने एक बार कहा और दो बार मैंने ये सुना है कि सामर्थ्य परमेश्वर का है, और हे प्रभु, करुणा भी तेरी ही है, क्योंकि तू एक एक जान को उसके काम के अनुसार फल देता है। पाठ उपदेश बाइबल में से। उत्पत्ति: जो कुछ तू करता है उसमें परमेश्वर तेरे संग रहता है। निर्गमन: फिर यहोवा ने हारून और मूसा से कहा, पर्व की विधि ये है। और ठीक उसी दिन यहोवा इसराइलियों को मिस्र देश से डाल डाल करके निकाल ले गया। निर्गमन: फिर मूसा ने लोगों से कहा, इस दिन को स्मरण रखो, जिस दिन तुम दासों के घर अर्थात मिस्र से निकल आए हो। यहोवा तो तुमको वहां से अपने हाथ के बल से निकाल लाया, इसमें खमीरी रोटी ना खाई जाए। भजन संहिता: हे मेरे लोगों, मेरी शिक्षा सुनो, मेरे वचनों की ओर कान लगाओ। उन्हें हम उनके संतान से गुप्त न रखेंगे, परंतु होनहार पीढ़ी के लोगों से यहोवा का गुण अनुवाद और उसके समर्थ और आश्चर्य कामों का वर्णन करेंगे। उसने तो याकूब में एक चेतावनी ठहराई और इसराइल में एक व्यवस्था चलाई, जिसके विषय उसने हमारे पुत्रों को आज्ञा दी कि तुम उन्हें अपने अपने लड़कों को बताना, कि आने वाली पीढ़ी के लोग अर्थात जो लड़के उत्पन्न होने वाले हैं वो उन्हें जाने और अपने अपने लड़कों से उनका बखान करने में उद्यत हों, जिससे वो परमेश्वर का असर रखें और ईश्वर के बड़े कामों को भूल ना जाएं, परंतु उसकी आज्ञाओं का पालन करते रहें। उसने तो उनके बाप दादाओं के सामुख मिस्र देश के स्वान के मैदान में बहुत काम किए थे। उसने समंदर को दो भाग करके उन्हें पार कर दिया और जल को धीर के नियन खड़ा कर दिया, और उसने दिन को बादल के खंभों से और रात भर अग्नि के प्रकाश के उद्धार उनकी अगुवाई की। वो जंगल में चट्टाने फाड़कर उनको मानो गहरे जल आशियाओं से मनमन पलाता था। उसने चट्टान में से भी धाराएं निकाली और नदियों का सा जल बहाया, और उनके खाने को मन बरसाया और उनको स्वर्ग का अन्न दिया। उनको शूरवीराओं की सी रोटी मिली, उसने उनको मनामन भोजन दिया। शामुएल: अपने संकट में मैंने यहोवा को पुकारा और अपने परमेश्वर के सामुख चिल्लाया, और उसने मेरी बात को अपने मंदिर में से सुन लिया और मेरी दुहाई उसके कानों में पहुंची, और उसने मुझे निकाल कर चौड़े स्थान में पहुंचाया। उसने मुझको छुड़ाया क्योंकि वो मुझसे प्रसन्न था। हे यहोवा, तू ही मेरा दीपक है, और यहोवा मेरे अंधियारे को दूर करके उजियाला कर देता है। तेरी सहायता से मैं दल पर धावा करता, अपने परमेश्वर की सहायता से मैं शहरे पनाह को फांद देता हूँ। ईश्वर की गाटी खरी है, यहोवा का वचन ताया हुआ है, वो अपने सभी शरण आगटों की ढाल है। मत्ती: और यीशु सारे गलील में फिरता हुआ उनकी सभाओं में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता, और लोगों की हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। मत्ती, तब लोग एक अंधे गूंगे को जिसमें दुष्ट आत्मा थी उसके पास लाए और उसने उसे अच्छा किया और वो गूंगा बोलने और देखने लगा। इस पर सब लोग चकित होकर कहने लगे, ये क्या दाऊद की संतान का है? परंतु फरीसियों ने ये सुनकर कहा, ये तो दुष्ट आत्माओं के सरदार शैतान की सहायता के बिना शैतान को नहीं निकालता। उसने उनके मन की बात जानकर उनसे कहा, जिस किसी राजे में फूट होती है वो उजड़ जाता है, और कोई नगर या घराना जिसमें फूट होती है बनाना रहेगा। और यदि शैतान ही शैतान को निकाले तो वो अपना ही विरोधी हो गया है, फिर उसका राज्य क्यों कर बना रहेगा? भला यदि मैं शैतान की सहायता से दुष्ट आत्मा को निकालता हूँ तो तुम्हारे वंश किसकी सहायता से निकालते हैं? इसलिए वही तुम्हारा न्याय चुकाएंगे। पर यदि मैं परमेश्वर की आत्मा की सहायता से दुष्ट आत्मा को निकालता हूँ तो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे पास आ पहुँचा है। लूका। फिर वो किसी जगह प्रार्थना कर रहा था, और जब वो प्रार्थना कर चुका तो उसके चेलों में से एक ने उससे कहा, हे प्रभु, जैसे यूहन्ना ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया वैसे ही हमें तू भी सिखा। उसने उनसे कहा, जब तुम प्रार्थना करो तो कहो, हे पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, हमारे दिन भर की रोटी हर दिन हमें दिया कर, और हमारे पापों को क्षमा कर, क्योंकि हम भी अपने हर एक अपराधी को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न ला। और मैं तुमसे कहता हूँ, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वो पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाता है। तुम में से ऐसा कौन पिता होगा कि जब उसका पुत्र रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे, या अगर मछली मांगे तो मछली के बदले उसे सांप दे, या अंडा मांगे तो उसे बिच्छू दे? तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा? रोमियो। और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। सो हम इन बातों के विषय में क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखम या तलवार? परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया जयवंत से भी बढ़कर हैं। क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ कि न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएँ, न वर्तमान, न भविष्य, न समर्थ, न ऊंचाई, न गहराई और न कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु मसीह यीशु में है अलग कर सकेगी। अब मैं मेरी बेकर एडी द्वारा क्रिश्चियन साइंस की किताब विज्ञान और स्वस्थ शास्त्रों की कुंजी के साथ के साहस संबंधी अंश पढ़ूंगा। विज्ञान और स्वस्थ। ईश्वर अनंत है, एकमात्र जीवन पदार्थ आत्मा या जान, ब्रह्मांड की एकमात्र बुद्धि जिसमें मनुष्य भी शामिल है। भगवान मनुष्य का दिव्य सिद्धांत और भगवान की समानता में आदमी अविभाज्य समान जैसा पूर्ण और शाश्वत हैं। ईश्वर आत्मा पिता का मन है और मनुष्य ईश्वर की आध्यात्मिक संतान है। पिता माता देवता का नाम है जो उनकी आध्यात्मिक रचना के कोमल संबंधों को अनगिनत करता है, जैसा कि परिरित ने इसे उन शब्दों में व्यक्त किया है जो उसने एक क्लासिक कवि से मंजूर होने के साथ उद्धृत किए थे, क्योंकि हम भी उसी की संतान हैं। ईश्वर प्रेम हमेशा से मिलता है और हमेशा हर मानवीय आवश्यकता को पूरा करता है। ये कल्पना करना ठीक नहीं है कि यीशु ने दिव्य शक्ति का छायान केवल संख्या के लिए किया, क्योंकि सभी मानव जाति के लिए और सभी समयों में सभी अच्छे की पूर्ति करता है। शुरुआत से लेकर अंत तक पवित्र शास्त्र आत्मा मन की बात की विजय से भरपूर है। मूसा ने मन की शक्ति को उसके द्वारा सिद्ध किया, जिसे पुरुषों ने चमत्कार कहा। यशुआ, एलिया और अलीशा ने भी किया। संकेत और चमत्कार के साथ मसीही युग की शुरुआत हुई। एक चमत्कार भगवान के कानून को पूरा करता है, लेकिन उस कानून का उल्लंघन नहीं करता। वर्तमान में यह तथ्य चमत्कार से अधिक रहस्यमय प्रतीत होता है। भजनहार ने गाया, हे समंदर तुझे क्या हुआ कि तू भागा, और हे यर्दन तुझे क्या हुआ कि तू उल्टी बही, हे पहाड़ों तुम्हें क्या हुआ कि तुम भेड़ों के नियन, और हे पहाड़ियों तुम्हें क्या हुआ कि तुम भेड़ बकरियों के बच्चों के नियन उछली। हे प्रभु पृथ्वी के सामने या यकूब के परमेश्वर के सामने थरथरा। चमत्कार किसी भी विकार का परिचय नहीं देता है, लेकिन भगवान के अपरिवर्तनीय कानून के विज्ञान की स्थापना करते हुए मौलिक आदेश को प्रकट करता है। वही शक्ति जो पाप को ठीक करती है, बीमारी को भी ठीक करती है। ये पवित्रता की सुंदरता है कि जब सत्य बीमारी को चंगा करता है तो ये बुराइयों को बाहर निकालता है, और जब सत्य बुराई नामक बीमारी को बाहर निकालता है तो ये बीमारों को ठीक करता है। जब मसीह ने गूंगेपन के शैतान को बाहर निकाला, ये तब हुआ जब अशुद्ध आत्मा बाहर निकल गई और गूंगा बोलने लगा। इसराइल के व्यक्ति को सीमित करने और पूछने के द्वारा यहूदियों के अपराध को दोहराने का खतरा है। क्या परमेश्वर जंगल में एक मेज प्रस्तुत कर सकता है? भगवान क्या नहीं कर सकता? दौड़ को बढ़ाने के लिए आवश्यकता इस तथ्य का पिता है कि मन ये कर सकता है, क्योंकि मन अशुद्धता की बजाय पवित्रता, कमजोरी की बजाय ताकत और बीमारी की बजाय स्वास्थ्य प्रदान कर सकता है। सत्य संपूर्ण व्यवस्था में परिवर्तनकारी है और इसके हर तिनके को पूरा कर सकती है। दिव्य मन जो कली और फूल बनाता है, मानव शरीर की देखभाल करेगा, यहाँ तक कि ये लिली को कपड़ों में रखेगा। मन शारीरिक इंद्रियों का स्वामी है और बीमारी, पाप और मृत्यु को जीत सकता है। इस ईश्वर पदार्थ अधिकार का प्रयोग करें, अपने शरीर पर अधिकार करें और उसकी भावना और कार्य को नियंत्रित करें। आत्मा के सामर्थ्य में वृद्धि का विरोध करना अच्छा है। ईश्वर ने मनुष्य को इसके लिए सक्षम बनाया है, और कुछ भी मनुष्य में दिव्य रूप से दी गई क्षमता और शक्ति को नष्ट नहीं कर सकता। पापी को सुधारने और पाप को ठीक करने वाली प्रार्थना एक पूर्ण विश्वास है कि भगवान के लिए सभी कुछ संभव है। एक आध्यात्मिक समझ, एक निस्वार्थ प्रेम विचार अनिर्दिष्ट प्रेम के लिए अज्ञात नहीं है। इच्छा प्रार्थना है, और हमारी इच्छाओं के साथ भगवान पर भरोसा करने से कोई नुकसान नहीं हो सकता। उन्हें कर्मों में और शब्दों में रूप लेने से पहले ढाला और बढ़ाया जा सकता है। प्रार्थना विज्ञान के होने को नहीं बदल सकती है, लेकिन ये हमें इसके साथ समान जैसे बिठाती है। इच्छा सत्य के प्रदर्शन को प्राप्त करती है। एक निवेदन के ईश्वर हमें बचाए, वो सब नहीं है जिसकी आवश्यकता है। दिव्य मन के साथ विनती करने की एकमात्र आदत, जैसा कि एक मनुष्य के साथ निवेदन करता है, ईश्वर में विश्वास को मानवीय रूप से प्रसारित करता है। एक त्रुटि जो आध्यात्मिक विकास को बाधित करती है। भगवान प्यार है, क्या हम उसे अधिक होने के लिए कह सकते हैं? ईश्वर बुद्धि है, क्या हम उस अनंत मन को सूचित कर सकते हैं जो वो पहले ही से जानता है? क्या हम पूर्णता को बदलने की उम्मीद करते हैं? क्या हम खुले फुफारे में और अधिक की याचना करेंगे, जिसे हम स्वीकार करने की तुलना में अधिक डाल रहे हैं? अनिच्छुक इच्छा हमें सभी अस्तित्व और आशीर्वाद को स्रोत के करीब लाती है। भगवान को भगवान कहना व्यर्थ की पुनरावृत्ति है। भगवान कल, आज और हमेशा के लिए वही है, और वो जो पूरी तरह से सही है, वो अपने प्रांत को याद किए बिना सही करेगा। जब हम सभी भावतिक संवेदना और पाप से ऊपर उठते हैं, क्या हम स्वर्ग में जन्मी आकांक्षा और आध्यात्मिक चेतना तक पहुंच सकते हैं, जो कि प्रभु की प्रार्थना में इंगित किया गया है? और जो तुरंत बीमारी को ठीक करता है। यहाँ मुझे ये बताने दें कि मैं प्रभु की प्रार्थना का आध्यात्मिक अर्थ क्या समझता हूँ। हे हमारे परम पिता जो स्वर्ग में विराजता है, हमारा पिता माता भगवान सभी समान जैसा पूर्ण, पवित्र हो तेरा नाम, मनमोहक तेरा राज्य आए, तेरा राज्य आ गया है, तू हमेशा मौजूद है, तेरी इच्छा पृथ्वी में हो जैसे कि स्वर्ग में है, जैसा कि स्वर्ग में है पृथ्वी पर भी हो, कि हम ये जानने में सक्षम हो कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है। हमारी आज की रोटी हमें दे, आज के लिए हमें अनुग्रह दे, कृपया प्रसिद्ध स्नेह खिला, और हमें हमारे कर्ज मुआफ कर, क्योंकि हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं, और प्यार प्यार में परिलक्षित होता है, और हमें प्रलोभन में ना ले जा बल्कि हमें बुराई से बचा, और परमेश्वर हमें प्रलोभन में नहीं ले जाता है बल्कि हमें पाप बीमारी और मृत्यु से बचाता है, क्योंकि राज्य शक्ति और महिमा सदा के लिए तेरे ही हैं, क्योंकि परमेश्वर अनंत है, सर्वशक्ति है, सभी जीवन सत्य प्रेम सभी प्रशासक है और सभी में है। अब मैं मेरी बेकर एडी द्वारा चर्च मैनुअल में दिए गए 3 दैनिक कर्तव्यों को पढ़ूंगा। दैनिक प्रार्थना। प्रत्येक दिन प्रार्थना करने के लिए इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का कर्तव्य होगा, तुम्हारा राज्य आए, ईश्वरी सत्य जीवन और प्रेम के शासन को मुझ में स्थापित कर और मुझ पर शासन कर, और तेरा वचन सभी मनुष्यों के स्नेह को समर्थ कर सकता है और उन पर शासन कर। उद्देश्यों और कर्तव्यों के लिए एक नियम। ना तो दुश्मनी और ना व्यक्तिगत लगाव मदर चर्च के सदस्यों के उद्देश्यों और कर्तव्यों पर लागू करना चाहिए। विज्ञान में दिव्य प्रेम ही मनुष्य को नियंत्रित करता है, और एक क्रिश्चियन विज्ञानी प्यार की मीठी सुविधाओं को दर्शाता है, प्यार में डांटने पर, सच्चा भाईचारा, परोपकार और क्षमा में। इस चर्च के सदस्यों को प्रतिदिन ध्यान रखना चाहिए और सभी बुराई दूर करने, भविष्यवाणी, न्याय करने, निंदा करने, परमाश देने, प्रभावित करने या गलत तरीके से प्रभावित होने से बचने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। कर्तव्य के लिए सतर्कता। इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का ये कर्तव्य होगा कि वो प्रतिदिन आक्रामक मानसिक सुझाव से बचाव करे, और भूलकर भी ईश्वर नेता और मानव जाति के प्रति अपने कर्तव्य की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। उनके कामों से उन्हें आंका जाएगा और वो उचित या निंदनीय होगा।